Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Svetashvatara Upanishad, Chapter 5 and 6, presented by Swami Sri Atmananda Giriji. Thank you. Om Namah Shivaya.
गमलों में फूल और गमलों में तुलसी लगाने वालों को क्या पता है कि बगीचा क्या होता है? यहां तक कि एक घर में गए तो गमलों में तुरैया लगाया हुआ था, गमलों में करेला लगाया हुआ था, तो हमको दिखाया, महाराज देखो यह करेले की खेती है। वाह, एक गमले में एक करेले का बेल, एक करेले की लता लगा ली, बड़ा मुश्किल से चार पांच करेला फलते हैं। और उसी से कहते हैं, महाराज देख लीजिए हमने करेले की खेती की है, और एक गमले में लौका लगा लिया, दूधी लगा ली, तो देख लो दूधी, वो भी गमला थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो उतनी से ही कहते हम अपने घर में ही खेती करते हैं, ऑर्गेनिक खेती है। आजकल ऑर्गेनिक की खूब चर्चा चलती है, क्या पता है इनको जो गमलों में करेला लगा में। अरे गांव में देखो घर के आगे क्या खेती होती है, कुछ खेती कुछ घास है पशुओं के लिए लगाया रखा है, कहीं फिर अनाज लगाया, कहीं भात लगा लिया। भात कहते हैं गुजराती में वो धान को, गुजरात में धान की खेती नहीं होती, भात की खेती होती है। धान को धान नहीं कहते हो, धान को भात कहते हैं गुजराती में, भात की खेती। गुजरातियों की भात खेत में पकती है, और के भात कुकर में पकती है, देखा किचन में पकती है, गुजरातियों की भात खेत में पकती है। हमारे खेत में भात पक गया है, लियो जी, हम पहले पहले जब गुजरात गए, हमारे पास खेत है, आधे खेत में भात पका हुआ है, तो हमको तो समझ में नहीं आया भात पका, खेत में भात पक रहा है, हमको समझ में नहीं आया, तो वो बार बार फिर समझाने लगा, आप क्या कहते हैं भात को, आप क्या कहते हैं? तो हमने कहा भात को तो भात ही कहते हैं भाई हिंदी में। नहीं नहीं, वो जो भात होता है ना उसके लिए चावल चाहिए, तो चावल उससे पहला रूप को क्या कहते हैं? हमने कहा धान कहते हैं। तो बोले हाँ हमने वही धान लगाया खेत में, तो फिर धान लगाया बोलो तो हमको समझ में आ जाए, भात लगाया कहोगे तो हमको क्या समझ में आएगा। अश्विन क्षेत्र दो प्रकार के खेत हैं परमात्मा के पास, एक छोटा खेत है एक बड़ा खेत है। व्यष्टि खेत छोटा खेत है और समष्टि खेत बड़ा खेत है। समष्टि खेत में बहुत ज्यादा है, बहुत कुछ है, लेकिन ये नहीं समझना कि छोटे खेत में भी वो कुछ कंजूसाई कर रहा हो। समष्टि खेत में जितनी खेती की है वो सभी चीज व्यष्टि खेत में भी किया है। ये बात अलग है कि समष्टि में करेले के बगीचा लगा दिया हो और व्यष्टि में एक पौधा लगा दिया हो, लेकिन करेला लगाया है। आप समझ गए होंगे इस भाव को। एक तो है समष्टि विश्व और दूसरा है व्यष्टि तुम्हारा शरीर, क्योंकि क्षत्र शब्द का अर्थ शरीर ही कहा है गीता में। इदम शरीरम कौन्तेय क्षत्र मित्य अभिधीयते, ये कौन्तेय ये अर्जुन कुंती नंदन अर्जुन, इदम शरीरम ये जो तुम्हारा शरीर है, ये जो मेरा शरीर है, ये उसका शरीर है, ये उसका शरीर है, ये सारे के सारे जितने भी शरीर है, इस शरीर को ही खेत कहा है, छत्र कहा है, इसी का नाम है छत्र। और इस क्षेत्र में फसल उत्पन्न किया जाता है, खेत में ही तो फसल लगाया जाएगा। कुछ फसल ऐसे होंगे जहां से सुगंध निकलते हैं, जैसे कि फूल, कुछ फसल ऐसे होते हैं कि जहां से रस, जैसे कि आम, तो ये शरीर में परमात्मा ने कौन कौन सी क्या क्या खेती की है। एक एकम जालम बहुधा विकर्वन, एक एक क्षेत्र, हर एक क्षेत्र व्यष्टि व्यष्टि क्षेत्र क्षेत्र खेत में, और यह समष्टि क्षेत्र में। पहले व्यष्टि को समझ लो, क्या बढ़िया आंख की खेती करती उसने, इसी शरीर में तो उसने आंख का निर्माण किया है। एक एकम जालम, ये जाल, इसी खेत में क्या बढ़िया कान बना दिया है, आप सत्संग सुन पा रहे हो। यदि वो ये खेती वो न करता, क्या आपकी क्षमता थी? आपकी क्षमता तो थी नहीं, तो खेत उसकी है, आपकी नहीं है। शरीर भी तो उसी ने बनाया, उसी का है, और उसने अपनी खेत में अपनी फसल बना ली है यार। कहीं बढ़िया आंख, कहीं बढ़िया कान, कहीं बढ़िया नाक, कहीं बढ़िया मुख, कहीं बढ़िया जिह्वा, कहीं बढ़िया त्वचेंद्रिय, कहीं कर्मेंद्रिय, कहीं ज्ञान इंद्रिया, कहीं पंच प्राण, कहीं अंतकरण चतुष्टया, ये सब कहां है? इसी क्षेत्र में तो है। कहीं कुटस्थ, कहीं चिदाभास, इन सबको खोजने कहां जाओगे? यही तो है, चिदाभास भी यही है, कुटस्थ भी यही है, अंतकरण चतुष्टय भी यही है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, पंच ज्ञान इंद्रिय, पंच कर्म इंद्रिया, पंच प्राण। क्या खेती है इस शरीर के अंदर, कोई साधारण नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है। कश्मीर में जिस प्रकार से केसर की खेती होती है, इसी प्रकार से इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में भी कम मूल्य कम कीमत की खेती नहीं है बाबा। कश्मीर में एक शिव भक्त महिला हुई है, हमने प्रसंग में कभी सुनाया होगा, परम शिव भक्त जिसका नाम लल्लेश्वरी था, उसके जीवन को देखो क्या मार्मिक जीवन है। ब्राह्मण की कन्या, ब्राह्मण घर में ब्याही है, उच्च कोटि के ब्राह्मण की वधू बनकर घर गई है, लेकिन उस ब्राह्मण कुल तो बड़ा उच्च था कुल के दृष्टि से, लेकिन उसकी सास जो थी वो बड़ा कलंक था, उस सास के दृष्टि से वो बड़ा कलंकित थी, और जन्मजात ये सास और बहुओं का दुश्मनी वहां स्पष्ट रूप से प्रकट हुआ था। सास उस बहू को, लल्लेश्वरी को, बहुत त्रास करती थी, बहुत परेशान करती थी, यहां तक कि दिन भर काम करावे काम करे, वो मरी मीट कर काम करे, और खाने के समय में सबको तो भरपेट भोजन बनाए और बांटे वो अपने हाथ से, वो सास, और जब बहू की बारी आई खाने की, थाल में एक पत्थर, गोल मटोल पत्थर रख देती थी, पत्थर के ऊपर भात ऐसे लगाकर, देखने में ऐसा लगे कि थाल बहुत भरा हुआ है भात से, और जब बहू खाने बैठती थी तो अंदर पत्थर निकलता था, भात तो ऊपर ऊपर रखा हुआ था। बोल नहीं सकती थी बहू, बोले कि आजकल की बहू होती तो दो थप्पड़ मार देती है, तो बोल नहीं सकती थी, चुपचाप उस पत्थर के ऊपर से भात निकाला और उसको खा लिया, उतनी से संतुष्ट कर दिया, वो पत्थर धो धा के रख दिया, क्योंकि कल भी तो चाहिएगा ना सास को, और आजकल की बहू होती तो ले जाके फेंक देती समुद्र में। दूसरे दिन जब खाने का समय हुआ फिर वही पत्थर थाल में रखा, ऊपर से भात रख दिया, बहू के सामने रख दिया, ले खा ले। और सारे परिवार कुटुंब को, उसके पति को, उसके ससुर को, उसके सबको सुनने इतनी जोर से कह देती थी वो सास, और सबको देखने में लगे कि ये बहू कितनी खाती है, देखो थाल इतनी ऊंचे तक भात का ढेर बना हुआ है। लेकिन उसको जब खाने लगे तो पत्थर सहन करती रही, बहुत सहन करती थी। देखो सहन एक साधना है, वो आज इसी की कमी है मनुष्य जीवन में, तितिक्षा की कमी है, कुछ भी सहन करना नहीं चाहता है, चाहे वो प्राकृतिक घटना हो, चाहे वह व्यावहारिक घटनाएं हो, चाहे पारिवारिक घटनाएं हो, चाहे सामाजिक घटनाएं हो, सहन करने की क्षमता तो आज मनुष्य के जीवन से इतना दूर चला गया। और एक कष्ट को सहन न करने का परिणाम यह होता है कि उससे प्रतिक्रिया में वह हजार कष्ट उसके सामने आ जाते हैं, लेकिन वो बहुत ही समझदार सहन करती थी। एक दिन की बात है कि ब्राह्मणों का पर्व है श्रावणी रक्षाबंधन, तो नदी के किनारे में वह वस्त्र धोने के लिए गई थी, तो वहीं पर उसका ससुर यज्ञोपवीत अभिमंत्रित करने के लिए, श्रावणी कर्म करने के लिए वहीं नदी के किनारे में उसका ससुर भी, गांव के सभी पुरुष गए थे और गांव की सभी महिलाएं वहां पानी लेने के लिए और वस्त्र धोने के लिए थी। नदी के एक तरफ महिलाएं अपनी गृह कार्य कर रही थी और नदी के दूसरी तरफ पुरुष अपने श्रावणी कर्म कर रहे थे, उसमें उसका ससुर भी था। तो वहां एक मुसलमान की औरत आई, उसने लल्लेश्वरी को संबोधन करके कहा कि अरे लल्लेश्वरी, आज तो श्रावणी पर्व है, तुम ब्राह्मणों का हिंदुओं का पर्व है, तुम्हारे घर में तो खूब बढ़िया पकवान पके होंगे, आज तो बहुत मीठा मीठा बहुत स्वादिष्ट भोजन करोगी, जैसे हमारे यहां रोजा के समय में पकवान पकते हैं, ईद के दिन पकवान पकते हैं पर्व के दिन, वैसे आज तुम्हारी पारी है, तुम्हारे यहां खूब पकवान पके होंगे। बोले पके तो है, फिर खूब खाओगी। बोले क्या खाए, हमारी सास खाने दे तब ना खाए, लोगों के थाली में लोगों के उसमें पकवान बढ़िया जाते हो जाए, लोग खाते हो खाए, लेकिन बहन क्या बताऊं, मेरे थाल में तो वही गोल मोटोल पत्थर आना है, वो मुझे पता है, मतलब मेरी सास ये करती है। लेकिन ये बात आज तक उसने कहा नहीं था किसी से, आज पहली बार उसके मुख से ये पीड़ा निकली। ये इस तरह निकली कि उसका ससुर वहां श्रावणी कर्म कर रहा था, उसने सुन लिया, सब लोग तो चले गए, ससुर ने बहू को बुला लिया, कहा कि बेटी तुमने जो कहा मेरे थाल में पत्थर आएगा गोल मटोल, ये रहस्य मैं नहीं समझ पा रहा हूं, क्या रहस्य बताओ। बेचारा पहले तो डर गई, फिर भी जब कहना था उसने पूछा तो कह दिया। सास यानी आपकी पत्नी, मेरी सास मेरे भोजन करने के समय में मेरे थाल में पहले पत्थर रखती है और फिर उसके ऊपर भोजन रखकर मुझे देती है। देखने में यह लगता है कि थाल भरा हुआ है, लेकिन खाने में कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा, उतनी से मेरा प्राण की रक्षा हो रही है। अच्छा, ससुर गया घर में, उसने अपनी पत्नी को बुलाया, उसके सास को बुलाया, ए तू ऐसा करती है बहू को, ये घोर अन्याय है, पाप है, ऐसा क्यों करती है भाई। पति ने उसको इतना समझाने की कोशिश की, समझने की अपेक्षा वो तो और करकसा थी, बहू को जाकर कुटने शुरू कर दिया, तूने मेरी शिकायत की है, आज ये हिम्मत तेरी है, कुटना शुरू किया, अब तो अति हो गया। तब सहन नहीं कर सकी, जब अति हो गया। तुलसीदास जी ने एक जगह लिखा है, अति रगड़ करे कोई जो कोई, अनल प्रगट चंदन दे वही। यू तो चंदन में, चंदन तो बहुत शीतल लकड़ी है, बहुत ठंडा लकड़ी है, लेकिन उसको भी ज्यादा घर्षण कर देती हो तो उसमें से भी अग्नि प्रकट हो सकती है। तो लल्लेश्वरी ने क्या विचार किया कि इस तरह इस घर में बैठने की अपेक्षा भगवान के आश्रय में ही रहना ठीक है। तो लल्लेश्वरी की जीवनी में लिखा हुआ है, शिव भक्त है, इसीलिए उसने वो जो गोल मटोल पत्थर था उसी को उठाया और चल पड़ी घर छोड़ के जंगल में, गुफा में बैठ गई, उसी को शिवलिंग के रूप में प्राण प्रतिष्ठा कर दिया। बस भावना ही तो है, परमात्मा भावना से प्रकट होता है, भाव यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी, जिसकी जैसी भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखें तिनी तैसी, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखें तिनी तैसी। लल्लेश्वरी ने उसी गोलमटोल पत्थर को बस एक गुफा के कोने में रख लिया, उसी को शिवलिंग के रूप में भावना कर ली। प्रतिदिन नदी जाती है, जल लेकर आती है, चढ़ाती है, और प्रतिदिन जंगल में जाती है, बेल पत्ता और फूल लेकर आती है, चढ़ाती है, कुछ फल फूल मिल जाता है वो शिव को चढ़ाती है, वही नैवेद्य के रूप में खाती है, प्राण की रक्षा होती है बस। और वहीं बैठकर उसी को ध्यान करती है, शिव जी का, शिव मंत्रों का जप, शिव स्वरूप का ध्यान, उसकी यही साधना हो गई है बस। परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे उसका चित्त इतना शुद्ध, इतना निर्मल हो गया कि भगवान शिव की इतनी कृपा हो गई कि ज्ञानमिच्छित्तु संकरात, शास्त्र ने कहा है, भगवान शिव चाहे तुम्हारे लौकिक ज्ञान हो, चाहे आध्यात्मिक ज्ञान हो, ज्ञान देने वाले तो शिव ही हैं, क्योंकि ब्रह्म विद्या के अधिष्ठाता भगवान शिव हैं। ईशान सर्व विद्यानाम ईश्वर, ब्रह्म विद्या के उपासक भगवान शिव के उपासक होते हैं। तो शिव उपासना का प्रतिफल ऐसा हो गया कि उसके हृदय में धीरे धीरे ब्रह्म विद्या स्फुरित हुई, पूर्व जन्म का संस्कार जग गया, शायद पूर्व जन्म की कोई जिज्ञासु सत्संगी थी, संस्कार जग गया। अब तो धीरे धीरे उसका देह अध्यास खत्म, और घर से निकलते समय जो वस्त्र था उसके अलावा और कोई वस्त्र तो थे नहीं उसके पास, वो तो साल डेढ़ साल में वो तो पहनते पहनते ही खत्म हो गए, चढ़ गए, फट गए, खत्म हो गए, अब पहनने के लिए कोई वस्त्र भी नहीं है। अब वस्त्र की क्या जरूरत है, गुफा में रहती है, अकेले रहती है, क्या जरूरत है वस्त्र की। तो धीरे धीरे वो देहाध्यास भी खत्म हो गया उसका। तब एक बार वो कभी कभी प्रारब्धवश गांव में जाया करती थी भिक्षा मांगने, प्रारब्धवश गांव में जाती थी भिक्षा मांगने। तो कश्मीर तो केसर की खेती हो प्रधान देश है, तो सब किसान वो केसर की खेती करते थे, उनके बीच में से वो जोर जोर से आवाज करते हुए निकलती थी, ए किसान हो तुम इतनी मेहनत से खेती कर रहे हो किसान केसर की, लेकिन सावधान तुम्हारा ये मेहनत बेकार न चला जाए, क्योंकि एक पगला गधा इस खेत में आने वाला है, इसी खेत में है, और सावधान वो गधा तुम्हारी सारी केसर की खेती को नष्ट न कर देवे। इतनी कहती और निकल जाती थी, किसानों को समझ में नहीं, इधर उधर देखते थे गधा किधर से आ रहा है, कहीं भी गधा नहीं है, उनको क्या पता कि गधा उन्हीं के पास है, गधा है लेकिन अपनी गधा नहीं दिखती है, है? बाहर की गधा दिखती है, अंदर की गधा नहीं दिखती है। लल्लेश्वरी अंदर की गधा की बात कर रही है, समझ में नहीं आ रहा उन लोगों को ये क्या बोल रही है, कहां है गधा, चारों तरफ खेती की रक्षा के लिए वो लोग बाड़ लगा रहे हैं, दीवार लगा रहे हैं, चौकीदार रख रहे हैं, और गधा कभी भी नहीं आता है। और वो रोज आकर कहती है कि सावधान एक पागल गधा आने वाला है, तुम्हारे खेत को सब चौपट कर जाएगा वो। परेशान हो गए किसान, तो महीनों निकल गया, गधा एक दिन में नहीं आता है, बहुत परेशान हो गए। तो एक दिन एक संत घूमते हुए गए दक्षिण भारत से, उनको देखकर किसानों ने कहा, महाराज एक औरत यहां रहती है, पागल जैसी लगती है, नंगे घूमती है, नंगे धड़ंगे घूमती है, और रोज आकर कहती है कि गधा तुम्हारे केसर की खेती को बर्बाद कर जाएगा, और हम रोज तैयारी रक्षा के लिए तैयारी करते हैं, गधा आज तक नहीं आया, लेकिन रोज कहती जाती है वो, क्या है महाराज? तो संत समझ गए कि वो क्या कह रही है, संतों की भाषा संत ही समझ, खग जाने कगई की भाषा, संतों की भाषा तो संत ही जानता है, संसारी क्या जाने संतों की भाषा भाई। हाँ, तो संतों ने समझ गए, संत ने, अरे भाई उसका अभिप्राय है खेत शब्द का अर्थ शरीर है, केसरी शब्द का अर्थ होता है आत्मा, और गधा शब्द का अर्थ होता है मन। उसने जो कहा है ना, तुम्हारे खेत में जो केसर की खेती है वो गधा चर जाएगा, तो ये तुम्हारे जो जीवन, अनमोल जीवन, बेशकीमती जीवन, आत्मा, वो शरीर रूपी खेत में वही विद्यमान है, लेकिन यदि तुम असावधानी कर रहे, सावधान नहीं हुए, तो मन रूपी गधा जीवन रूपी केसर को बर्बाद करके खत्म कर देगा, तहस नहस कर जाएगा। आप देखते हो थोड़े से बोतल की दारू से सड़कों के किनारे गंदे नाली में ले जाकर फेंक देता है जीवन को, किसके चलते? वही गधा। मन संयम न होने होना ही असंयमित मन, अनियंत्रित मन, वही गधा है। तो ये गधा तुम्हारे अंदर है, और केसर ही बाहर की केसर के लिए नहीं कह रही है, ये तुम्हारे जीवन रूपी केसर की कह रही है, खेत इस खेत की बात नहीं कर रही है, ये शरीर रूपी खेत की बात कर रही है, और जीवन रूपी केसर की खेती तुम्हारे यहां है, और मन थोड़ा सा प्रमाद कर गए तो सब बर्बाद हो जाएगा, सावधान। ये संतों की भाषा। एक एकम जालम बहुधा विकुर्वन, अस्मिन क्षेत्र अस्मिन क्षेत्र संहरत्ते सदैव, इसी क्षेत्र में अनेक प्रकार की जाल, जाल शब्द का अर्थ होता है एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध, और उसका उसके साथ संबंध, उसका उसके साथ संबंध, इसी का तो जाल है, इसी को जाल बोलते हैं। आपने देखा है मछुआरों के जाल, एक ये धागा इस तरह एक दूसरे से ग्रंथि बंधी हुई है, एक दूसरे के साथ बंधी, दूसरा तीसरे के साथ बंधा, बनते बनते सब एक गांठे गांठ ग्रंथि, ग्रंथियों का संजाल, उसी को जाल बोलते हैं। उस जाल को तो मछुआरे ने बनाया, ये विश्व संसार का जो जाल है, ये जाल किसने बनाया? परमात्मा ने बनाया। यहां कोई भी वस्तु अकेले नहीं है, एक वस्तु दूसरे वस्तु से संबंधित है, दूसरा वस्तु तीसरे वस्तु से, तीसरा वस्तु चौथे वस्तु से, चौथा पांचवें से, पांचवा छठे से। तुम्हें अनाज उत्पन्न करना है तो पृथ्वी की आवश्यकता पड़ी, अनाज के लिए पृथ्वी आवश्यकता है, और पृथ्वी होने मात्र से अनाज नहीं होगा, पृथ्वी में अनाज के बीज डालने के बाद फिर पानी की आवश्यकता है, पृथ्वी और बीज बपन किया, पानी नहीं हुआ तो क्या अनाज होगा? और केवल पानी से संबंधित है इतना ही नहीं है, पानी के साथ साथ ऊर्जा की आवश्यकता है, इसलिए ठंडे प्रदेशों में खेती क्यों नहीं होती, जहां बर्फ होता है वहां खेती क्यों नहीं होती, जमीन तप नहीं पाती है, ये खाद डालते हैं, यूरिया डालते हैं, किस लिए डालते हैं? जमीन की धरती की जो ठंडाई है ठंडा हो गया उसको तपाने के लिए, और ज्यादा तप गया तो फिर फसल नहीं होगा, फिर पानी डाल के उसको ठंडा बैलेंस मिलाना पड़ता है। तुम्हारे इस शरीर में इस सब का संजाल है, पानी भी है अग्नि भी है, और फसल को बढ़ने के लिए स्पेस भी चाहिए, आकाश भी चाहिए, वायु भी चाहिए, सभी चीज चाहिए। एक जाल है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, इसलिए तो गीता में इसको कहा है परस्परम भावयंता, एक दूसरे से बंधे हुए हैं। जड़ जड़ से बंधा हुआ है, चैतन्य चैतन्य से बंधा हुआ है। तुम मालिक बनकर नहीं रह पाओगे, मालिक मालिक नौकर के बंधा हुआ है, नौकर नौकर बनकर नहीं रह पाए, नौकर मालिक से बंधा हुआ है, यही तो जाल है। आपके एक छोटे से घर में ही कितने व्यक्तियों का संजाल है, ये विश्व की विशेषता है। ये विश्व एक जाल है, संजाल है। इस विश्व जाल को बनाया किसने? एक एकम जालम बहुधा विकुर्वन, जालम कर्मफल लक्षणम बंधनम। जालम हर व्यक्ति व्यष्टि और समष्टि कर्मों से बंधा हुआ है, यही तो जाल है। आप अपने कर्मों से भी बंधे हैं, साथ में अन्यों के कर्मों से भी बंधे हैं। पत्नी के कर्मों से पति बंधा हुआ है, पति के कर्मों से पत्नी बंधी हुई है, पत्नी अपने कर्म से भी बंधी है, पति अपने कर्म से भी बंधा हुआ है, और पत्नी के कर्म से पति बना हुआ है, पति के कर्म से पत्नी बना हुआ है, मां के कर्म से बेटा बना हुआ है, बेटे के कर्म से मां बनी हुई है, भाई के कर्म से भाई बना हुआ है, बहन बनी हुई है। जाल है ये, तुम्हारे संबंधों का जाल पता लगाते जाओ, सारा संतान तुम्हारे खानदान निकलेंगे। हाँ, खोजते जाओ, वंशज को खोजते जाओ, तुम्हारा पूर्वज, उसके पूर्वज, उसके पूर्वज, जब ऋषि को जाओगे तुम, तुम्हारा गोत्र प्रवर्तक ऋषि में जाओगे, तो उस ऋषि के फिर संतति सब तुम्हारे ही मिलेंगे। यहां तुम जिसको नहीं जानते हो, जिसको नहीं पहचानते हो, और इसीलिए कहते हो कि उसका मेरा कोई संबंध नहीं है, और यदि खोजते जाओ उसके कहां है, क्या उसका जाति है, तो जाति पूछो, और जाति के साथ साथ गोत्र पूछो, तो कहीं ना कहीं भाई गोत्र का संबंध आ जाएगा। ले जी, कौंडिन्य गोत्र, आत्रेय गोत्र, ले जी, तो सभी बंधे हुए। एक एकम जालम बहुधा विकुर्वन, जालम कर्मफल बंधनम जालम। हम केवल अपना व्यक्तिगत कर्म प्रारब्ध नहीं भोगते, समष्टि कर्म का भी भोगना पड़ता है। ये जो गर्मी हो रही है, ये तुम्हारे एक व्यक्ति के प्रारब्ध से गर्मी नहीं हो रहा है। बंबई में, बंबई में रहने वाले सभी के प्रारब्ध से गर्मी हो रही है, इसीलिए सभी तप रहे हैं। तो मेरे प्रारब्ध से समष्टि मैं तप रहा हूं, और मेरे व्यष्टि प्रारब्ध से सभी तप रहे हैं। कर्म का दो भाग होता है, समय हो गया, कल इसकी और व्याख्या करेंगे।